पृष्ठ संख्या 70, काव्य भाषा। निराला और मुक्तिबोध की काव्य भाषा के संदर्भ में सापेक्षिक मीमांसा बहुत युक्तिसंगत नहीं है। निराला न केवल हिंदी भाषी क्षेत्र के थे, उन्हें संस्कृत पद रचना का भी अच्छा खासा ज्ञान था। दूसरी ओर मुक्तिबोध मूलतः अहिंदी भाषी थे, उनकी काव्य भाषा इसलिए स्थल स्थल पर खुरदरी लगती है। यह और बात है कि वही उनकी पहचान भी बन चुकी है। निराला का भाषा पर जैसा अधिकार है, भाषा के अनेक विधा प्रारूप जिस प्रकार उन्होंने उपस्थापित किए हैं, वैसा कोई नहीं कर सका है। अज्ञेय की भाषा पर पकड़ बड़ी सशक्त है, किंतु पृष्ठ संख्या 71, उनका भाषिक पैटर्न आदि से अंत तक एक ही रहता है, अभिजात वर्गीय। निराला की भाषा अज्ञेय के भाषा स्तर से बहुत ऊपर भी जाती है और बहुत नीचे भी। राम के शक्ति पूजा के आरंभ की भाषा अपनी सघन समासिकता के कारण कादंबरी की याद दिलाती है। विच्छुरित वहिन राजीव नयन हत लक्ष्य बाण, लोहित लोचन रावण मदमोचन महीयान, राघव लाघव रावण वारण गत युग्म पहर, उद्धत लंकापति मर्दित कपिदल बल विस्तर, अनिमेष राम विश्व युद्ध ईश्वर भंग भाव, द्युद्धांग बद्ध कोदंड मुष्टि खर रुधिर श्राव। निराला के लिए सामासिक भाषा यहाँ एक अनिवार्यता थी। उन्हें दिन भर के युद्ध का खाका पेश करना था ताकि राम और उनकी सेना की मनः स्थिति का सही परिचय पाया जा सके। इतने कम शब्दों में इतने बड़े युद्ध का वर्णन विश्व के शायद ही किसी कवि ने किया हो। भाषा का टकसाली रूप हमें इस चित्र के ठीक बाद देखने को मिलता है। लौटे युगदल राक्षस पद तल, पृथ्वी टलमल बिंध महोल्लास से बार बार आकाश बिकल। दोनों पक्षों की सेनाओं के लौटने की सूचना के साथ स्वयं पाठक भी जैसे किसी चक्रव्यूह से बाहर आ जाता है और खुली हवा में सांस लेने लगता है। निराला का युद्ध वर्णन पढ़ना वस्तुतः एक युद्ध में शामिल होना है और उसकी समाप्ति के बाद अपने शिविर घर में लौटना अवसादजनक तो है ही, किंतु पाठक युद्धरत सैनिकों की ही भांति जैसे भाषा के जंगल से किसी प्रकार निकलकर अपने विश्राम गृह की ओर थके कदमों से ही सही लौटता है। हारा हुआ आदमी लौटकर घर ही तो आएगा। लौटे युगदल से निराला की भाषा का प्रारूप बदल जाता है। समास आगे भी है किंतु वह छिटपुट है। आरंभिक अंश की भांति सघन एवं निरंतर नहीं। निराला की भाषा का सहज रूप इन पंक्तियों में देखा जा सकता है। का चमकती दूर ताराएं ज्यों ही कहीं पार, खा सब घेर राम को बैठे आज्ञा को तत्पर, गा टूटा वह तारा ध्यान का स्थिर मन हुआ विकल, घा जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका। यह निराला की सहज भाषा है और यही टकसाली हिंदी है। निराला के भाषा अधिकार का परिचय उनमें विशिष्ट शब्द प्रयोगों में भी देखने को मिलता है। राम की शक्ति पूजा में ऐसी अनेक स्थितियां मिलेंगी जहां निराला ने कतिपय शब्दों में विशिष्ट प्रयोग किए हैं। काव्यशास्त्र की भाषा में इसे पद पूर्वार्ध वक्रता के अंतर्गत रखा जाएगा। यद्यपि यह सर्वत्र लागू इसलिए नहीं होता क्योंकि इसकी परिधि में मूल शब्द या प्रतिपादिक ही आते हैं, तो भी यह प्रकरण वक्रोक्ति की ही सीमा में आता है। राम की शक्ति पूजा के आरंभ में ही अपराजेय समर की बात कही गई है। समर अपराजेय नहीं होता, पक्ष प्रतिपक्ष में कोई एक होता है। यहाँ अपराजेय का समर के विशेषण के रूप में अर्थ होगा अनिर्णीत। पृष्ठ संख्या 72, यों अद्वितीय अर्थ भी अप्रासंगिक नहीं होगा, किंतु उसमें कोई खास व्यंजकता नहीं है। ऐसा ही एक शब्द है विभक्त, जपते सभक्ति अजपा विभक्त हो राम नाम। विभक्त का सामान्य अर्थ है विभाजित या बटा हुआ। यहाँ यह शब्द एक और भी अर्थ देता है, विशेष रूप से भक्ति में लीन तथा शेष संसार से कटा हुआ। इसी कोटि का एक अच्छा प्रयोग इस पंक्ति में है। वह एक और मन रहा राम का जो न थका, जानती नहीं जो दैन्य नहीं जानता विनय। विनय शब्द का निराला ने एक सर्वथा नए अर्थ में प्रयोग किया है। विनय शब्द का प्रयोग अनुशासन के अर्थ में भी होता है। विनय पिटक बौद्ध भिक्षुओं की आचार संहिता मूल अर्थ है झुकना, नमित होना, विनम्रता। निराला ने यहाँ इस शब्द से कायरता या अनावश्यक रूप से विनम्र होना का अर्थ प्रक्षेपित किया है। विद्या शब्द का प्रयोग भी इसी प्रकार नए अर्थ में यात विद्या अति प्राकृत क्षमता रूपांतरण के अर्थ में हुआ है। राम की शक्ति पूजा में स्थित व्यंजक शब्द प्रयोग भी कम नहीं है। कुछ स्थल ले सकते हैं, एक डॉट 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 अस्थवीर दल ज्यों विभिन्न, दो अस्थल धनु गुण है डॉट डॉट डॉट, तीन जैसे ओजस्वी शब्दों का डॉट 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 ना हो कोई दुराव। विभिन्न शब्द का अर्थ यहाँ भिन्न भिन्न ना होकर अवसाद जन्य उदासीनता या अनमनेपन के कारण संवादहीनता की स्थिति में होना है। पराजय बोध से उत्पन्न ग्लानि वानर सेना को बौद्ध भिक्षुओं की ही भांति विरक्त की स्थिति तक ले जाती है। दूसरे प्रसंग में धनु गुण की शिथिलता राम की मानसिक क्लांति की संकेतक है। तीसरे उद्धरण में दुराव शब्द का प्रयोग विचित्र है। दुराव शब्द का सामान्य अर्थ है छिपाना, भेदभाव रखना या गोपन की भावना। निराला ने इस शब्द को यहाँ अर्थ परक विशदता दी है। यहाँ उसका लक्ष्यार्थ है गंभीर रहस्य या प्रयोजन। विभीषण जैसे वह सब मित्रता के नाते औपचारिक रूप से कह रहे थे, उनके कथन में हार्दिकता मानो नहीं थी या उनकी बातों में कोई सारगर्भित अर्थवत्ता नहीं थी। निराला की भाषा में कमियां भी हैं। एक ओर जहाँ वह पीठ फेरना मुहावरे का सार्थक प्रयोग करते हैं, वहीं ठीक उसी के बाद वह हाथ खींचना मुहावरे के संदर्भ को हिंदीकरण की झोंक में नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। तुम फेर रहे हो पीठ, हो रहा जब जय रण, तुम खींच रहे हो हस्त जानकी से निर्दय। हाथ के स्थान पर हस्त का प्रयोग किसी भी प्रकार से उचित नहीं था, छंद विधान की दृष्टि से भी नहीं, क्योंकि हस्त और हाथ शब्दों में समान तीन मात्राएं हैं और समान क्रम है। न्यून पद दोष भी दो स्थलों पर दृष्टिगत होता है, एक बोले रघुमणि मित्रवर विजय होगी न समर। पृष्ठ संख्या 73, दोनों पंक्तियों में अधिकारवाची शब्द में की अनुपस्थिति भाषिक त्रुटि है, ऐसा अनयोधानता में हो गया होगा, क्योंकि निराला अपनी भाषा के प्रसंग में सर्वत्र सचेत रहे हैं। यह भी हो सकता है कि इन स्थलों पर उन्होंने कवि का विशेषाधिकार जताना चाहा हो। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, मुक्तिबोध संस्कारतः अहिंदी भाषी थे, अतः उनमें निराला जैसे भाषाधिकार की अपेक्षा करना निरर्थक है। निराला ने अपनी काव्य कृतियों में हिंदी भाषा की वैविध्यपूर्ण अभिव्यक्ति भंगिमाओं का जैसा अनुरंजनकारी रूप उपस्थापित किया है, वैसा हिंदी के किसी अन्य कवि ने नहीं किया और शायद वैसा कर पाने की क्षमता भी किसी में नहीं थी। तत्सम शब्द विन्यास, सघन सामासिक पदरचना, टकसाली हिंदी, उर्दू बहुल भाषा, बोलचाल की मिश्रित भाषा जैसे भाषिक प्रकार उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से प्रस्तुत किए हैं। जाहिर है कि इस दृष्टि से मुक्तिबोध को उनकी भाषिक क्षमता की समकक्षता में रखना अप्रासंगिक होगा। तत्सम शब्दावली मुक्तिबोध के यहाँ है, एक लंबी सूची है ऐसे शब्दों की, पर वह मुक्तिबोध की सहज अभिव्यक्ति भंगिमा नहीं। अंधेरे में के आरंभ के शब्दों को देखें, जिंदगी के डॉट 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 कमरों में अंधेरे, लगाता है चक्कर कोई एक लगातार आवाज़ पैरों की देती है सुनाई बार बार डॉट 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 बार बार। मुक्तिबोध की काव्य भाषा का सामान्य पैटर्न यही है। इसे हम गांधी जी की हिंदुस्तानी कह सकते हैं। राम की शक्ति पूजा के आरंभ की पंक्तियों से तुलना करने पर बात स्पष्ट हो जाएगी। समासिकता का मुक्तिबोध की कविता में अभाव तो नहीं है, पर निराला और विशेषकर उनकी राम की शक्ति पूजा की सापेक्षता में वह नगण्य ही है। छोटे छोटे सामासिक प्रयोग अंधेरे में मिल जाएंगे, अंधकार ध्वनि तमशान, अंतराल विवर, उदर अंभरी, रक्तालोक स्नात आदि, किंतु वह कवि के सामासिक भाषा प्रयोग की क्षमता के परिचायक नहीं है। हाँ, यत्र तत्र मुक्तिबोध ने अंग्रेजी के सामासिक शब्दों के लिए नए प्रति शब्द अवश्य दिए हैं। दूसरी ओर हिंदी भाषा को नए पारिभाषिक शब्द भी प्रदान करते हैं, जैसे रेडियो एक्टिव के लिए तेज स्क्रिय शब्द। वैसे वे मूल अंग्रेजी शब्द का प्रयोग करने से भी परहेज नहीं करते। दोनों प्रकार के प्रयोग दृष्टव्य हैं। एक डॉट 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 रश्मि विकिरण मेरे भी प्रस्तर करते हैं प्रतिक्षण, रेडियो एक्टिव रत्न है वह भी। दो मेरे भी फूल हैं तेज स्क्रिय पर अतिशय शीतल। पृष्ठ संख्या 74। ये दोनों प्रयोग अंधेरे में कविता में दो तीन पंक्तियों के अंतराल पर मिलते हैं। टकसाली हिंदी का कोई मानक मुक्तिबोध के यहाँ नहीं मिलेगा। टकसाली हिंदी से मेरा तात्पर्य है ठेठ तद्भव शब्दों की हिंदी। ठेठ का आशय यह नहीं कि कोई तत्सम शब्द वहाँ आना ही नहीं चाहिए। जो तत्सम शब्द हिंदी में अति प्रचलित हो गए हैं, जैसे कमल नयन शुभ आदि, उन्हें तद्भववत मानना चाहिए, क्योंकि अधिसंख्य हिंदी शब्दों के मूल में तत्सम शब्द ही हैं। और अति प्रचलित तत्सम शब्दों ने जैसे तत्समता का आग्रह त्याग दिया है। राम की शक्ति पूजा में टकसाली हिंदी का रूप अधिक मुखर नहीं है, क्योंकि समूची रचना में एक प्रबंधगत सांस्कृतिक एकतानता है। फिर भी कुछ पंक्तियाँ देखी जा सकती हैं। एक कल लड़ने को हो रहा विकल वह बार बार, दो सिहरा तन क्षण भर भूला मन लहरा समस्त, तीन तुम फेर रहे हो पीठ हो रहा जब जयरण, चार धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका। यह टकसाली हिंदी निराला जी की सहज काव्य भाषा है, जो उनका एक महत्वपूर्ण प्रदेय है। भाषा के जो अन्य प्रारूप उन्होंने प्रस्तुत किए हैं, वे अधिकतर प्रयत्न जनित हैं। सामासिक शब्द विन्यास पर उनका असाधारण अधिकार अवश्य था, किंतु उनकी पहचान उनकी टकसाली या सहज हिंदी से ही मुख्यतः बनती है। मुक्तिबोध की इमेज दूसरी तरह की है। मूलतः अहिंदी भाषी होने के कारण उनमें हिंदी के सहज रूप की पकड़ का ना होना कोई बड़ा दोष भी नहीं माना जाना चाहिए। यदि वह लिखते हैं, अकस्मात चार का गजर कहीं खड़का मेरा दिल धड़का, डॉट 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 अनगिनत काली काली हाइफन डैशों सी लिखें डॉट डॉट डॉट, तो उनके लिए यही स्वाभाविक है और शायद समुचित भी, क्योंकि ऐसी ही खुरदरी भाषा के माध्यम से वह अपने खुरदरे अनुभव पाठकों तक पहुंचा सकते थे। खुरदरी मिश्रित तथा आम बोलचाल की भाषा के कई प्रारूप मुक्तिबोध की कविताओं में प्राप्त होते हैं। उनमें हिंदी तर भाषाओं की शब्दावली के उन्मुक्त प्रयोगों से लेकर अपशब्द तक मिलेंगे। कुछ प्रारूप दिए जा रहे हैं। एक विचित्र प्रोसेशन गंभीर क्विक मार्च डॉट 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 कल बत्तू वाला काला जरीदार ड्रेस पहने चमकदार बैंड दल, दो दोनों ओर नीली गैस लाइट पॉट डॉट 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 चमकदार सांपों की उड़ती हुई लगातार लकीरों की वारदात। पृष्ठ संख्या 75। तीन संगीन नोकों का चमकता जंगल टैंक दल मोर्टार आर्टिलरी सैनिकों के पथराए चेहरे उनके पीछे यह क्या कैवेलरी, काले काले घोड़ों पर खाकी मिलिट्री ड्रेस डॉट 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 कंधे से कमर तक कारतूसी बेल्ट है तिरछा कमर में चमड़े के कवर में पिस्तौल डॉट 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 कर्नल ब्रिगेडियर जनरल मार्शल डॉट 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 चार स्क्रीनिंग करो मिस्टर गुप्ता क्रॉस एग्जामिंग हिल थारुली पांच मारो गोली दागो शाले को एकदम छः सीन बदलता है सुनसान चौराहा सांवला फैला बीच में वीरान गिरुआ घंटा घर ऊपर कत्थई बुजुर्ग गुम्बद सांवली हवाओं के काल टहलता है। मुक्तिबोध की काव्य भाषा के एक कुछ प्रारूप हैं जो अंधेरे में कविता में देखने को मिलते हैं। प्रथम उद्धरण में सेना की गश्त के साथ जुलूस का भी बिंब कवि को देना है, इसलिए उसमें एक ओर क्विक मार्च है, दूसरी ओर बैंड दल की परंपरागत पोशाक से संबंधित उर्दू शब्दावली। दूसरा उद्धरण भी बिंब प्रधान है। इस वैशिष्ट के साथ कि मुक्तिबोध की निजी तथा सहज कल्पना शक्ति का उच्छलन यहाँ विद्यमान है। अंग्रेजी के शब्दों का बाहुल्य यहाँ नहीं है। गैस लाइट का सटीक प्रति शब्द शायद अभी तक हिंदी में नहीं बन पाया है। मुक्तिबोध ने सशक्त बिंबों की आमतौर से यह विशेषता रही है कि उनकी भाषा टकसालीपन की ओर उन्मुख रही है। तृतीय उद्धरण में अंग्रेजी के शब्दों का बाहुल्य है, कदाचित इसलिए कि कवि सेना से संबंधित अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करके सैन्य प्रदर्शन की स्थिति अंकित करने का प्रयत्न कर रहा है, जिसमें यह शब्दावली सहायक हो सकती है और वह सहायक हुई भी है, किंतु आतंकी अभिव्यक्ति अन्य भाषिक उपकरणों के माध्यम से भी हो सकती थी। चौथे अंश में सेना अधिकारियों की शब्दावली उद्धृत कर दी गई है। पांचवा उद्धरण अपशब्द शाल्य के प्रयोग का है। राम की शक्ति पूजा में इस प्रकार का प्रयोग नहीं है, यद्यपि निराला की अन्य कई कविताओं विशेषकर कुकुरमुत्ता में अपशब्दों के प्रयोग धड़ल्ले से हुए हैं। निराला के अवचेतन में जैसे अभिव्यक्ति के स्तर पर कविता के दो प्रारूप थे, उदात्त और अनुदात्त। उदात्त वर्ग की कविताओं राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, भावपूर्ण प्रगीत आदि की भाषा में अभिजात्य है। अनुदात वर्ग की रचनाओं कुकुरमुत्ता, खजोहरा, वनबेला तथा यथार्थ परक प्रगीत आदि में भाषा जनात्मक स्तर तक उतर आई है, जिसमें अपशब्दों का प्रयोग होता ही है। अंतिम उद्धरण मुक्तिबोध के बिंब विधान की भाषिक सार्वजनीनता का अनूठा उदाहरण है, जिसमें तद्भव शब्दों की प्रधानता तो है, किंतु उर्दू वीरान, बुजुर्ग, गुम्बद, हवा और अंग्रेजी सीन शब्द भी अभिव्यक्ति क्षमता बिंब निर्मित को परिपूर्णता देने में कम सहयोगी नहीं रहे हैं, बल्कि उनके बिंब शायद कवि का अभिप्रेत बिंब निर्मित ही ना हो पाता। इस श्रेणी की काव्य निर्मितियों को लेकर किसी विशिष्ट भाषिक पैटर्न को आधार नहीं बनाया जा सकता। पृष्ठ संख्या 76 यही कवि आलोचक से ऊपर हो जाता है। निराला ने भी राम की शक्ति पूजा जैसी तत्सम प्रधान कविता में वार शब्द का प्रयोग किया है। निष्फल होते लक्ष्य पर क्षिप्र वार पर वार, वार उर्दू शब्द है, किंतु वह कवि के रचना कौशल के कारण निष्फल लक्ष्य और क्षिप्र जैसे तत्सम शब्दों के बीच इस तरह जगह बना लेता है कि कुछ भी असहज नहीं लगता। लाक्षणिक प्रयोग मुक्तिबोध और निराला दोनों में बहुत कम है। यत्र तत्र ऐसे प्रयोग अकस्मात दिख जाते हैं, यथा एक गहन मृतात्माएं इसी नगर की अंधेरे में, दो खिंच गए दृगो में सीता के राममय नयन, राम की शक्ति पूजा। मुक्तिबोध के प्रयोग में तात्कर्म की लक्षणा है, राम की शक्ति पूजा में आधाराध्येय संबंध की। ऐसे दो चार प्रयोग और भी मिल जाएंगे, किंतु लाक्षणिकता दोनों ही कवियों की मूल भाषिक प्रकृति नहीं है। दोनों में अविधा का भी सौंदर्य है। निराला की अविधा शक्ति को व्यंजना और भाषिक अभिजात्य का संबल मिला है। मुक्तिबोध में अपने ढंग की मोहक वर्णन शक्ति है, जिसे हम सपाट बयानी की सीमा में नहीं बांध सकते, क्योंकि वहाँ प्रायः ही घटना कथन या वस्तु वर्णन के स्थान पर अनुभव और विचार की उदग्रता देखने को मिलती है। मुक्तिबोध की काव्य भाषा में चौंकाने वाले प्रयोग भी मिलते हैं, जो परंपरा के प्रति असहिष्णुता की व्यंजना करते हैं। मसलन उनके ये प्रयोग, एक सकर्मक सतचित विदना भास्कर, दो भयानक अनहद नाद की भन भन, ऐसे प्रयोग चौंकाने वाले भी कहे जाएंगे। कारण यह कि मुक्तिबोध एक ओर स्वयं अपने को ऋषियों की श्रेणी में रखने के लिए लालयित हो रहे हैं, दृष्ट ब्रह्मराक्षस शीर्षक कविता तथा कहानी, दूसरी ओर वह विद्रोही युवा पीढ़ी के प्रतिनिधि के रूप में भी स्वयं को प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। उनके द्विधा विभाजित व्यक्तित्व का परिचय उनके समूचे साहित्य में पाया जा सकता है। सिर्फ एक प्रासंगिक उदाहरण दिया जा रहा है, अंधेरे में वह पागल को स्वयं कवि का प्रतिरूप है के गीत को आत्मोद्बोधमय कहकर आत्म तत्व की महिमा का उद्घोष किया गया है, किंतु एक अन्य कविता में यह पंक्ति आती है, लार टपकाती हुई आत्मा की कुतिया, एक अन्य शून्य। जाहिर है कि मुक्तिबोध दो परस्पर विरोधी ध्रुवांतों के बीच नहीं ठहरना चाहते, वह एक ही साथ दोनों पर शीर्षस्थ होना चाहते हैं। यह मुक्तिबोध के आत्म व्यामोह का ही परिचायक है। निराला की राम की शक्ति पूजा मुक्तिबोध की अंधेरे में कविता की तुलना में भाषिक दृश्य से कहीं अधिक समृद्ध है। कहना तो यह सही होगा कि भाषिक समृद्धि की दृष्टि से राम की शक्ति पूजा एक अप्रतिम और कवि के ही शब्दों में अपराजेय कविता है। वह टकसाली हिंदी के साथ साहित्यिक हिंदी का एक सुगठित प्रारूप उपस्थित करती है। मुक्तिबोध की काव्य भाषा जनभाषा के निर्माण की दिशा में एक साहसपूर्ण प्रयोग है। उससे कोई समाधान नहीं मिलता, कोई दिशा नहीं मिलती, मिलती है बस एक चुनौती कि जनात्मक कविता की भाषा का रूप क्या और कैसा होना चाहिए।